పారాయణం నమోలోయ సవ్వసాహూణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారికం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం నమః సమయ సారాయ స్వానుభూత్యా చకాశతి చిస్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరక్షితే వందేతు సర్వసిద్ధే ధూమచలమణో వయం గదిం పత్తి వోచామి సమయ పాహుడ మణిమాశుద్ కేవలీ భణిదం అప్నా ఆజ్ గురుదేవ్ శ్రీ కా భీ నిర్జర అధికార్ పర్ दो बिंदुओं को लेकर के प्रवचन चला। ज्ञानी नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न होता है। इसकी चर्चा हालांकि पिछली गाथा में भी की थी और आज की गाथा में भी ये चर्चा बहुत विस्तार के साथ आई। गुरुदेव ने भी कहा था कि बात वही है, उसको विस्तार के साथ में उस बात को कहा। स्वरूप का ग्रहण और पर रूप का त्याग, फिर एक एक पे घटित किया। बहुत अच्छी चर्चा वो निर्जरा अधिकार की है और उसमें अपन ने देखा गुरुदेव के प्रवचन में कि विषय वस्तु का तो सर्वांगीण स्पष्टीकरण आता ही है, साथ ही अपन लोगों को प्रेरणा देने के लिए वो जगत के अनेक प्रकार के उदाहरणों को आधार बनाकर अपने को बहुत बहुत प्रेरणाएं देते हैं ना। अपन लोग जगत के जिन पदार्थों में मोहित होते हैं उनकी क्षणभंगुरता उनकी विनाशीता तक का परिचय देते हुए भी अपने को उधर से हतोत्साहित करने का, उधर से अपनी रुचि हटाने का एक प्रयोग गुरुदेव के प्रवचन में आता है। कभी कभी नाम लेकर के भी और कभी कभी बिना नाम लिए भी, है ना। ये सब बातें अपने को मिलती है एक प्रवचन में। वास्तव में देखा जाए तो एक एक प्रवचन में पूरा पूरा विषय उनका मिल जाता है। ये तो अपन लोग सुनते ही हैं और वास्तव में बहुत रसकस वाले प्रवचन हैं। अभी अपन यहां संवर अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। संवर अधिकार में अपनी जो बात आई थी वो क्या बात आई थी कि संवर अधिकार का प्रारंभ करते हुए आचार्य भगवान ने यह बात कही थी, कुंदकुंद आचार्य देव ने, कि सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है। जब ये बात कहते हैं लोग शब्द पकड़ते हैं कि साहब उत्कृष्ट उपाय अगर भेद ज्ञान है तो चलो हम उत्कृष्ट उपाय, हम तो नहीं, हमें उत्कृष्ट उपाय करना, हमें कोई मध्यम और जघन्य उपाय तो बता दो। एक एक शब्द पकड़ते ना, मध्यम और जघन्य उपाय। आज भी कितना प्रवचन में था है कि इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि धूल है जहर है राग, क्या हो जाएगा राग से। कितना मैंने राग पर तो इस कषाय की मंदता करने से हो जाएगा, अमुक अमुक करने से हो जाएगा, इस बात पर इतने इतने गुरुदेव हथौड़े मारते हैं। और उसके बाद भी कुछ लोग समझने की जिज्ञासा से भी प्रश्न करते होंगे, कुछ लोग स्पष्टीकरण कराने के लिए भी प्रश्न करते होंगे। अपन ये नहीं कहते कि सभी लोगों को ऐसा अभिप्राय ही पड़ा होगा, लेकिन इतना सुनने के बाद भी बार बार वो प्रश्न आना, ये अंदर में कहीं न कहीं राग की रुचि की मिठास को दर्शाता है। ये समझ लेना क्यों आता है बार बार ये प्रश्न, ऐसा तो होगा ना, ऐसा करने से तो ये तो करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, जो काम अनंत काल में अनंत बार कर चुका। और फिर गुरुदेव, फिर वो मुनिव्रत धार अनंत बार है ना, और वहां तक फिर वो पूरी कहानी उनको सुनानी पड़ती है। मतलब वो अपने भूल, मतलब होता है ना जैसे किसी की याददाश्त चली जाए, तो याददाश्त चली जाए तो क्या होता है, फिर उसका उसको सेक मारा जाता है जोर से। तो ऐसे ही हम लोगों की याददाश्त चली गई। कैसी याददाश्त चली गई हम लोगों की, कि ये सब काम हम अनंत बार कर चुके हैं, और फिर ज्ञानियों के सामने कि ये तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा ना, तो फिर एक बिजली का सेक मारते हैं अपने को, वो कि मुनिव्रत धार अनंत बार। तो मुनिव्रत धार अनंत बार वो दूसरे की बात नहीं कह रहे, कि वो दूसरा है ना, वो जो तेरा पड़ोसी है, वो अनंत बार मुनिपना धारण किया है, तूने नहीं धारण किया अभी, ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं मेरी आत्मा ने और तुम्हारी आत्मा ने, अरे सभी आत्माओं ने अनंत बार जो काम कर लिया, उसी काम को करने की क्या बात करना है? कि एक काम नहीं किया, क्या नहीं किया, कि भेद ज्ञान संवर करने का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान। अब उत्कृष्ट उपाय का मतलब क्या, कि मध्यम और जघन्य उपाय की खोज मत करना। जैसे क्या मतलब, कि एक पिता का इकलौता बेटा हो, ठीक है, अब कोई उससे पूछे तेरा बड़ा भाई, क्या मैं, कि तेरा मझला भाई, वो भी मैं, कि तेरा छोटा भाई, कि वो भी मैं, कि क्या मतलब इसका, कि भाई साहब अपने पिता की मैं इकलौती संतान हूं, तो अब तुम बड़ा समझना हो, मझला समझना हो, छोटा समझना हो, जो समझना हो समझो, मैं ही हूं। इसी तरह वेद ज्ञान संवर का एकमात्र उपाय है। अब इसे तुम उत्कृष्ट उपाय समझो, मध्यम उपाय समझो, जघन्य उपाय समझो, जो भी समझो, ये है उत्कृष्ट। कहा तो मध्यम और जघन्य खोजने की कोशिश मत करना, उत्कृष्ट उपाय यानी एकमात्र उपाय यह है। और ये चर्चा चल रही है, इसमें अपन लोगों ने गाथा पर, गाथा का अन्वयार्थ अपन लोगों ने पढ़ा था। चलो आज गाथा का हरि गीत फिर से पढ़ते हैं, आज तो 15 मिनट अपने पास ज्यादा है, थोड़ा आनंद ज्यादा लो, है ना। देखो, उपयोगी में उपयोगी को उपयोगी नहीं, क्रोधादि में है क्रोध क्रो चय क्रोध नहीं उपयोग योग है न अष्ट विधि करिमो अवरुनो कर्म ए कर्म अरुनो कर्म कुछ नहीं उपयोग अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव उपयोग शुद्धात्मा करे। कितनी गजब की बात कह दी, उपयोग में उपयोग सुनकर के उछल आना चाहिए, है ना। ये भेद ज्ञान की बात आचार्य देव शुरुआत से करते आ रहे हैं, ये संवर अधिकार में तो ये समझ लो कि ये भेद ज्ञान की बात चरम सीमा पर पहुंची है। आगे और भी आएगी, हालांकि आगे तो और भी लिया है, आगे जब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा और जब आत्मा के अकर्ता अवोक्ता स्वभाव की चर्चा आएगी, तब तो कहेंगे कि आत्मा बंद और मोक्ष का भी करता नहीं है, वहां तक बात तो वहां तक ले जाएंगे। अभी यहां तक जो चर्चा चली कि उपयोग में उपयोग, और उपयोग में उपयोग क्रोधादि में नहीं, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, इसकी टीका आज अपन शुरू करते हैं। अन्वयार्थ अपन लोगों ने पढ़ा था। देखो आचार्य देव की शैली कितनी गजब की है, क्योंकि उनको पता था कि जब हम ये बात कहेंगे तो इसने द्रव्य गुण पर्याय का बहुत अभ्यास किया हो सकता है। तो बार बार अपना जो अभिप्राय है, अपन अपने उस अभिप्राय को सुरक्षित रखकर आचार्य देव की बात को सुनते हैं। तो बात सुनते हैं ना, तो बार बार फिर अपने मन में प्रश्न उमड़ घुमड़ करके आते हैं कि साहब ये बताओ कि ये बात ऐसी ऐसी ही है क्या? ये कह रहे हैं, ये प्रदेश भेद की बात कर रहे हैं, ये फलानी बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अरे होता नहीं तो कहते क्यों? मतलब हमें किस पर शंका उठती है, विचार करना जरा। यहां पे शुरुआत, इसलिए आचार्य देव ने पहले क्या किया कि सीधे प्रदेश भेद की चर्चा नहीं की। पहले प्रदेश भेद क्यों है उसका कारण बताया। मतलब क्या होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो ना, तो पहले उसकी शुगर लेवल पे लानी पड़ती है, और बिना शुगर लेवल पे लाए और बिना बीपी लेवल पे लाए, अगर ऑपरेशन थिएटर पे अगर उसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो क्या होगा? कि होगा कुछ नहीं, बस ऑपरेशन के लिए गए थे और शमशान के लिए ले जाना पड़ेगा, ये होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए पहले लेवल पर आचार्य भगवान लाते हैं। वो बात कहां से उठाते हैं? वो द्रव्य की पर्याय है, राग आत्म द्रव्य की पर्याय है। हम क्या है, आचार्य भगवान वस्तु से बात उठा रहे हैं और हम पर्याय से बात लेते हैं। तो जब द्रव्य की पर्याय हम कहते हैं तो प्रदेश भेद मानने में बहुत तकलीफ आएगी, और जब हम उसको वस्तु के रूप में स्वीकार करेंगे तो प्रदेश भेद के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। देखो यह चर्चा ऐसा नहीं कि पहले नहीं आई है, समय सार की दूसरी नंबर की गाथा में, कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो दूसरे नंबर की गाथा से इस बात के बीज आचार्य देव ने डाल दिए। प्रदेश भेद की चर्चा तो 181 82 83 में स्पष्ट रूप से आई, लेकिन बीज कहां से डले इस बात के? जब आचार्य देव ने, अरे समय सार का पहली गाथा में तो मंगलाचरण किया और प्रतिज्ञा वाक्य किया, और जिसे कहते ना बोणी, कहते ना बोणी, वो नया नया साल की बोणी आएगी कि नहीं आएगी, है ना? तो इसी तरह समय सार की बोणी जो की आचार्य भगवान ने, वो बोणी यहीं से की उन्होंने। कैसे? कि देखो दूसरी नंबर की गाथा में क्या कहा, मैं आपको बहुत सारे प्रमाण दूंगा इस बात के लिए कि ये बात आचार्य देव ने कहां कहां कही, एक बात। और गुरुदेव श्री के भी आपको इसी गाथा के अलावा भी, अभी अपने पास 3 स्वाध्याय है सुबह के, तो इसमें आपको गुरुदेव श्री के भी बहुत सारे प्रमाण आपके सामने रखूंगा कि गुरुदेव ने ये बात किस तरह और कितनी जगह सिद्ध की, और उन्होंने कितने कितने प्रमाण देकर के ये बात सिद्ध की, और ये बात कहकर के गुरुदेव श्री हमको क्या कहना चाहते हैं, है ना? ये बात निश्चय की बात है, फलानी अपेक्षा से कह दी है, है तो प्रदेश भिन्न है, लेकिन यह तो एक जोर देने के लिए बात कह दी है। भाई साहब, जोर देने के लिए भी आचार्य झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनके पास जोर देने के लिए भी सत्य का जोर बहुत है। कि झूठ देकर के आपको जोर दिलाना, यह आचार्यों की शैली नहीं है, ज्ञानियों की शैली नहीं है, है ना? वो उसमें यह कहकर के वो कहना क्या चाहते हैं? दूसरे नंबर की गाथा की चर्चा आप करो, देखो थोड़ी चर्चा समझो। दूसरे नंबर की गाथा में आपने ये देखा, स्व किसकी व्याख्या है? स्व समय पर समय की। स्व समय किसे का, पर समय किसे का? सब स्वाध्याय लोग हैं, आपको चिंता नहीं करो। और नहीं उत्तर, मतलब जिसको देने की भावना उत्तर देना, नहीं देने की भावना मत देना, गलत दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो गिरेगा ना वो सवार बनता है। कोई कहेगा मुझे तैरना तो है, लेकिन भैया पानी को छूने का मेरे त्याग है। तैरना मुझे जरूर है कि पानी के छूने का त्याग है, कि तू तैरने की थ्योरी सीख सकता है, प्रैक्टिकल नहीं सीख सकता। थ्योरी है कि यूं हाथ किया जाता है, यूं पैर किया जाता है, यूं, लेकिन जब पानी में गिर जाए ना तो थ्योरी काम नहीं आएगी, वहां प्रैक्टिकल काम आएगा। देखो आचार्य देव ने वहां कहा स्व समय और पर समय की व्याख्या की। एक एक प्रमाण आप लेते जाना, अभी मैं इसके बाद टीका शुरू करता हूं कि एक एक प्रमाण। पहला प्रमाण कि देखो भाई, स्व समय पर समय की व्याख्या की। स्व समय में क्या कहा, पर समय में क्या कहा, यह शैली जो इस गाथा में आई है, यह शैली आपको स्पष्ट रूप से तो इसी गाथा में मिलेगी और इसके बीज अन्य अन्य गाथाओं में भी आपको मिलेंगे। क्या कहा उन्होंने, स्व समय की व्याख्या क्या की है, चारित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानिए, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानिए। क्या कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, आप गजब है बात, दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, द्रव्य के गुण के पर्याय, यहां पर्याय की बात है ना, कि दर्शन ज्ञान चारित्र यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है यह कहने के बजाय वो क्या कह रहे हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। अभी तक क्या हुआ कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र तो था, आत्मा में ज्ञान गुण भी है, आत्मा में श्रद्धा गुण भी, आत्मा में चारित्र गुण भी है, आत्मा में श्रद्धा की पर्याय भी हो रही है, आत्मा में ज्ञान की पर्याय भी हो रही है, आत्मा में चारित्र की पर्याय भी हो रही है ना। लेकिन श्रद्धा की पर्याय में परद्रव्य में मैंपना, ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य में मैंपना और चारित्र की पर्याय में परद्रव्य में अपने रूप स्थिर मन लीनता करने, मैंने सभी मैंने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय का व्यवसाय, उसका विषय अभी तक किसको बनाया हुआ था, पर को बनाया हुआ था। अब आचार्य कहते हैं कि जिस समय तेरी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में भगवान आत्मा आएगा, श्रद्धा में कौन के भगवान आत्मा, भगवान आत्मा में श्रद्धा नहीं कह रहे, श्रद्धा में भगवान आत्मा आएगा, ज्ञान में भगवान आत्मा आएगा, चारित्र में भगवान आत्मा आएगा, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का वो व्यवसाय कि जिस श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की परिणति में भगवान आत्मा बसा हो। श्रद्धा से पूछो तमें कौन छो, तो श्रद्धा उत्तर दे के मैं श्रद्धा हूं, सम्य दर्शन से, अभी दूसरी भाषा में बोले कि सम्य दर्शन से पूछो कि तुम कौन हो और वो ये उत्तर दे के मैं सम्य दर्शन हूं, समझ लेना मिथ्या दर्शन है वो। सम्य ज्ञान से पूछा तुम कौन हो और वो उत्तर दे मैं सम्य ज्ञान हूं, समझ लेना मिथ्या ज्ञान है वो। सम्यक चारित्र से पूछो कि तुम कौन हो और वो उत्तर दे के मैं सम्यक चारित्र हूं, समझ लेना वो मिथ्या चारित्र है। अरे श्रद्धा का ज्ञान का चारित्र का स्वर ये हो कि मैं आत्मा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा में आत्मा, ज्ञान में आत्मा और चारित्र में आत्मा, उसको उन्होंने कहा स्व समय है ना। और उन्होंने पर समय की व्याख्या क्या की कि पर समय की व्याख्या यह नहीं की जो राग में स्थित है, हालांकि अर्थ वही है कि जो राग में रचा पचा है, लेकिन राग कहने के बजाय उन्होंने क्या कहना पसंद किया कि जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, माने जो राग में खड़ा है ना, जो विकार में खड़ा है ना, जो विकार की एकत्व बुद्धि में खड़ा है ना, जो मिथ्या दर्शन में खड़ा है ना, तो उन्होंने उसको विकार में खड़ा नहीं कहा, विकार में खड़े जीव को पर समय कहने के लिए उन्होंने कहा कि वो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। क्या मतलब हुआ इसका, ये कहकर के आचार्य देव ने क्या संदेश दिया कि ये संदेश दिया कि वो आत्मा में नहीं है ना, तो आत्मा में नहीं है तो विकार में है, तो विकार में है माने किसमें है, तो उन्होंने कहा कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। इसका यह कहकर के उन्होंने क्या संदेश दे दिया बोलो आप, दूसरी गाथा में यह संदेश नहीं दे दिया कि ये जो विकार है, यह विकार ये वास्तव में कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, यह विकार जो विकार में स्थित है वो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकार और कर्म के अभेदता है, दर्शन ज्ञान चारित्र और भगवान आत्मा के अभेदता है। टोडरमल जी साहब की शैली में इसी बात को लो, अगर आप ज्ञान प्रदान शैली से, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो श्रद्धा प्रदान शैली में ऐसा कथन कर दिया, अभी सुन लो टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में जब इस सात तत्वों का निरूपण किया और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्य दर्शन कहा, तो उन्होंने तत्वार्थों को दो हिस्सों में बांटा, सात तत्व की बात आई ना, सात तत्व को फिर दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में बांट करके उन्होंने दो ग्रुप बनाए तत्वों के, एक बनाया जीव का ग्रुप और एक बनाया अजीव का ग्रुप। अजीव माने पुद्गल, अजीव माने धर्म अधर्म आकाश काल में तो कोई मतलब है नहीं है ना। तो जीव और जीव के सामने दूसरा ग्रुप बनाया अजीव का, अजीव का माने पुद्गल का, ठीक है। तो जीव के ग्रुप में उन्होंने रखा संवर, उन्होंने रखा निर्जरा और उन्होंने रखा मोक्ष, माने इन चार तत्वों को स्वतत्व के रूप में रखा है ना। दृष्टि के विषय में तो ये भी पर में जाएंगे, लेकिन अभी ज्ञान प्रदान शैली की बात करें ना अपन, तो ज्ञान प्रदान शैली में उन्होंने जीव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, एक द्रव्य रूप और तीन उसकी पर्याय रूप, इनको रखा स्व में। और आश्रव बंद पुण्य पाप को किसमें रखा बोलो, कि वो अजीव के ग्रुप में रखा। जीव और अजीव के प्रदेश भेद है कि एक ही है, बताओ जरा, नक्की कर लो। कि जिस ने जीव और अजीव, उस जब जीव और अजीव के एक प्रदेश नहीं कहते आप, तो जो जीव के ग्रुप में है और जो अजीव के ग्रुप में है, तो अजीव के ग्रुप में जो आश्रवादी तत्व है, विकारी तत्व है, विकार परिणाम है, उसका उसके प्रदेश आप जीव के साथ अभेद कैसे कर सकते हो। ये शैली वहां पर भी कहने का तरीका अलग है, लेकिन ये बात बहुत जगह आई है। अभी और भी अपन प्रमाण लेंगे, जरा टीका पढ़ ले, थोड़ा टीका पढ़ते हैं। देखो आप कहां से शुरू की आचार्य देव ने बात, ये प्रमाण तो अपन ऐसे एक एक दो दो लेते रहेंगे, थोड़ा शास्त्र की टीका पढ़ें, क्योंकि अपने गुरुदेव श्री की शैली है। क्या शैली है? कि शास्त्र के शब्द पढ़ो और फिर उसमें से अर्थ करो, है ना। तो देखो ये शैली क्या है, वास्तव में, यहां भी वो वास्तव में शब्द डाला है। अब ये टीका में देखो जरा, न खलवे कस्य आया ना, देखो यहां कहते हैं जो वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। क्या कहा उनने, कि ये बात कहने के पहले एक कानून की धारा रखी सामने। हम सीधा ऐसा कहने जाएंगे ना तो ये फटाफट से तकलीफ में आ जाएंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा ऐसी बात। अरे साहब कैसी बातें करते हो। तो आचार्य भगवान ने पहले कहा कि देखो एक नियम है ना, और वो नियम सर्वज्ञ परमात्मा का आबादित नियम है ना। क्या नियम? कि एक वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। अगर दो वस्तु है ना, तो दो वस्तु दो रूप में कब है? कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है तो दो वस्तु की सिद्धि होगी। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप हो तो फिर दो वस्तु की सिद्धि कैसे करोगे आप? आई बात समझ में? ये दो अंगुलियां हैं, तो ये अंगुली इस अंगुली रूप नहीं है और ये अंगुली इस अंगुली रूप नहीं है, तभी तो दो अंगुलियां हैं ये। और अगर ये अंगुली इस रूप हो और ये अंगुली इस रूप हो तो फिर दो क्यों हो? आया समझ में? ये कानून भगवान सर्वज्ञ परमात्मा के सनातन सत्य मार्ग का, ये कानून कि अगर इस कानून को आप निकाल दो तो फिर अन्य मत में और सर्वज्ञ मत में कोई अंतर नहीं बचता। सर्वज्ञ का जो वस्तु स्वरूप है, उनके द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु स्वरूप है, वो यही तो कहता है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। और कैसे नहीं है? कि खाली कहने की बात नहीं है, वास्तव में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर कहीं कहा जाता हो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की कहीं कहा गया हो, तो उस कथन को तुम ईमानदारी से बोला गया सफेद झूठ समझना। व्यवहार नहीं है ना, व्यवहार नहीं से बोला जाता है ना। तो व्यवहार नहीं से बोला जाने वाला, यानी ईमानदारी से बोला जाने वाला सफेद झूठ। ईमानदारी शब्द का क्यों प्रयोग किया मैंने? कि वो ये कह रहा है कि ये बात मैं असद्भूत व्यवहार नहीं से कह रहा हूं, माने वो व्यवहार ये कह रहा है कि भाई साहब ये बात मैं झूठे नहीं से कह रहा हूं। मतलब क्या? कि असत्य बोलने वाला ये कह रहा है कि मैं असत्य बोल रहा हूं, तो असत्य बोलने वाला ये बात सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आगे बात समझ में? कि असत्य बोलने वाला ये सत्य बोल रहा है कि मैं असत्य बोल रहा हूं, इसका नाम है ईमानदारी से बोला गया सफेद झूठ। आगे बात समझ में कि भाई ये एक वस्तु की दूसरी वस्तु वास्तव में नहीं है। क्या गजब की बात करी। ये एक पहला सिद्धांत है ना। और देखो अब इसका कोष्टक में खुलासा किया। कोष्टक का इतिहास क्या है ये तो आपको पता है। किसी बात का विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री की अनुमोदना से उनको दिखाकर इस शास्त्र की जिनने गुजराती टीका लिखी हमारे पंडित हिम्मत भाई जी उन्होंने ये कोष्टक बनाए और गुरुदेव श्री से इनको बाकायदा पास कराया गया। उनको दिखाए बिना कोई कोष्टक नहीं डाला गया किसी ग्रंथ में। ये पद्धति है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई भी संबंध नहीं रखती। कोई भी 200 नंबर का कलश इसके पहले आ चुका। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्व। ये शब्द आ चुका है कि वास्तव में आत्मा और पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। है ना। संबंध की कल्पना के ये विषमवाद को पैदा करती है। तीसरे नंबर की गाथा। अरे हरेक वस्तु जब अपने एकत्व में सुंदर है। एक वस्तु की दूसरे वस्तु में मिलावट नहीं है और मिलावट नहीं होना एक वस्तु का दूसरी वस्तु रूप नहीं होना यह इस सृष्टि का सौंदर्य है ना। तो फिर क्या होता है कि मिलावट की बात करना। मिलावट तो कर ही नहीं सकते तुम लेकिन मिलावट की कल्पना करते हो तो इस मिलावट की कल्पना में मिलावट की बात में ही विषमवाद है। यह विषमवादिनी कथा है। आ गया ये सब कहा है। देखो क्योंकि अब यहां पे क्या कहा। अभी राग और आत्मा की बात नहीं कर रहे हो। अभी क्या कह रहे हैं क्यों है एक वस्तु दूसरी वस्तु की क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। यानी प्रदेश भिन्न जहां कहा ना वहां सब कुछ भिन्न हो जाता है। क्यों क्यों क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। आ गया। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है। अनुपपत्ति माने दोनों की एक सत्ता है। ये बात किसी तरह से सिद्ध नहीं होती। अनुपपत्ति का मतलब होता है कि एक सत्ता की सिद्धि नहीं होती। उनमें सिद्धि ही नहीं होता। जैसे अदालत कहती है ना फैसला देती है ना कि गवाहों के बयान सुन करके या साक्ष्य को देख करके है ना ये पक्ष इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि अमुक अमुक मुलजिम ने। मुलजिम बोलते हैं ना पहले और जब अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं मुजरिम है ना। तो हाँ मुजरिम मुजरिम कब बोलते हैं कि जब अपराध सिद्ध हो जाए। हाँ अपराधी को और अपराध का आरोप लगे उसे बोलते हैं मुलजिम। कि मुलजिम पर यह अपराध सिद्ध नहीं हुआ इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाता है ना। इसी तरह जिनवाणी भगवान सर्वज्ञ देव की कोर्ट वो क्या कहती है कि एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की नहीं है क्योंकि दोनों के प्रदेश भेद है इसलिए इन दोनों में एक सत्ता की अनुपपत्ति अर्थात सिद्धि नहीं होती। इसलिए प्रत्येक वस्तु वस्तु है स्वतंत्र है स्वाधीन है इस बात की घोषणा सर्वज्ञ की अदालत करती है। ये बात है भैया। देखो अनुपपत्ति है अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। आ गया। और इस प्रकार किस प्रकार कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती दोनों के प्रदेश भिन्न है। जब ऐसा है और दोनों की एक सत्ता की सिद्धि अनुपपत्ति नहीं होती अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तब एक के साथ दूसरे को आधार आधेय संबंध भी आधार आधेय संबंध भी मतलब दूसरे संबंधों की तो बात ही मत करो लेकिन आधार आदेश संबंध भी है ही नहीं। पहले तो ये कानून सिद्ध किया है ना। अब देखो, इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप अर्थात दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है। इतनी बात सिद्ध करने के बाद अब फिर इस बात को उन्होंने अप्लाई किया किसमें, ज्ञान में और राग में। समझ में आ गया, इतनी बात किस बात को सिद्ध करने के लिए की कि वो हमारी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाए आचार्य देव। अभी ऑपरेशन करना है ना, हाँ बार बार फुदक के मारता है ना, अरे है तो हमारी पर्याय में ना, पैदा तो हमारी पर्याय में हुआ है ना, वो ठीक है, वो बिल्कुल कर्म के वो सब ठीक है। लेकिन देखो, जब कोई बेटा अपने घर में पैदा हुआ और अपने कुल को कलंक लगाने लगे तो माता का हृदय जरा कोमल हो सकता है, होता है और होना भी चाहिए, लेकिन पिता क्या बोलता है कि आज मैं अखबार में यह विज्ञापन दे रहा हूं कि आज से यह मेरा बेटा नहीं है और इसके साथ किसी भी प्रकार के लेन देन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की अपनी होगी, ठीक है। और मां कहे वो ठीक है, तुम विज्ञापन दे दो लेकिन बेटा अपना ही है, और बार बार उस बात को याद दिलावे, तो फिर वो एक बार दो बार तो धीरे से समझाए कि तुमको एक बार समझाया समझ में नहीं आता क्या, नहीं ठीक है तुम कितने कठोर बनो, विज्ञापन दे दो सब कुछ है लेकिन बेटा अपना है भूलना मत। आप एक बार समझो, अगर बेटा अपना नहीं होता, ध्यान से सुनना अभी जरा, कि अपना नहीं होता तो विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी, और यदि वास्तव में वो अपना होता, अभी सुनना ध्यान से, अपना होता माने क्या, कि अपने कुल की मर्यादाओं को लांछित करने वाला नहीं होता तो विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी। अरे वो विज्ञापन दे आत्मा, अगर आत्मा के और आत्मा और राग अगर दोनों एक प्रदेश में एक प्रदेशों में दिखते नहीं, जैसे ये यहां पे मैं बैठा हूं और यहां पे माइक रखा है, तो आत्मा तो यहां दिखता और राग यहां दिखता तो आचार्य को प्रदेश भेद कहने की जरूरत ही नहीं थी। आ गया, क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि आंख के अंधे को भी दिखता कि अलग अलग है ये। लेकिन स्थिति क्या हो गई कि जहां ज्ञान है वहीं राग है और जहां राग है वहीं ज्ञान है, दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक है। स्थान एक किस अपेक्षा से कह रहा हूं मैं, भी आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से। ध्यान से सुनना कि दोनों का स्थान एक है, इसीलिए तो जीव को राग में आत्मा अपने का भ्रम होता है ना, राग और आत्मा के प्रदेश में एक पने का भ्रम होता है। अगर ये जैसे यहां मैं बैठा हूं और यहां माइक पड़ा है, अगर ऐसी आकाश प्रदेश की अपेक्षा से भी दूरियां दिखाई देती तो आचार्य देव को इतनी कसरत नहीं करनी पड़ती अपने को समझाने के लिए, इतनी कसरत करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इतना व्यवसाय किया, वो इसीलिए किया कि भाई वो जहां तुम्हें ज्ञान दिखाई देगा, जहां तुम्हारे को ज्ञान का परिणमन चल रहा है, वहीं राग की उत्पत्ति भी उसी जगह पे हो रही है। उसी जगह पर होने पर भी तुम चाहो कि हम ये दो हाथ की तरह, इधर ज्ञान के प्रदेश आत्मा के प्रदेश और इधर राग के प्रदेश, ऐसे दो हाथ की तरह तुम्हें अलग अलग आकाश के प्रदेशों में राग और ज्ञान के प्रदेश दिखा दें, ये संभव नहीं है। एक ही जगह होने पर भी तुम्हें उन्हें उनकी प्रदेश भिन्नता दिखनी चाहिए, तब जाकर के ये भेद ज्ञान का प्रयोग सफल होगा, है ना। अब देखो, ये बात मैं नहीं कहता हूं, अकेले प्रदेश की बात नहीं है। अभी देखो गुरुदेव श्री का भी एक आपको उदाहरण देता हूं जरा, संबोधी प्रवचन वो निकालिए समय सार सिद्धि का नौवां भाग निकाल लीजिए, समय सार सिद्धि नहीं सॉरी वैभव, समय सार वैभव का नौवां भाग देखो गुरुदेव श्री ने कितना लिया। ये देखो एक पद्धति भैया, आपको अच्छी लगे आप अपनाना, नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन ये पद्धति है कि जैसे जो विषय चलने वाला है, कल आज शाम को चलने वाला है, कल चल जो भी चलने वाला है, एक बार उस विषय को घर से पढ़ के आओ। थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर वो विषय चला, जो जो उद्धरण आपको आपके सामने रखे गए, उन उद्धरणों को घर पे जाकर के फिर से देखो, तब विषय पक्का हो जाएगा। अभी देखो ये जो समय सार वैभव है, गुरुदेव श्री का प्रवचन है 181 से 183 गाथा पर, और हां और इसमें पेज नंबर 299 है। देखो मैं पूरा पूरा नहीं, आप पूरा पढ़ लेना घर पे, लेकिन अपन जितनी बात गुरुदेव ने कितनी जोरदार तरीके से इसी बात को, किस जोर से बात कही है गुरुदेव ने, आचार्य भगवान ने क्षेत्र की भिन्नता की बात करी, तो गुरुदेव क्षेत्र की भिन्नता में से कौन कौन सी भिन्नता निकाली, जैसे आचार्य देव ने उपयोग में उपयोग है ये बात कही, कुंद आचार्य ने कहा उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है, तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने उसमें से प्रदेश भिन्नता की बात निकाली, और आचार्य अमृत चंद्र ने जब ज्ञान और राग के प्रदेश भेद की चर्चा करी, तो गुरुदेव श्री ने उसमें से क्या क्या रहस्य निकाला, है ना, ये समझो। देखो क्या कहते हैं यहां पे भगवान, ये आपका 299 पेज है, और 299 पेज में ऊपर से तीसरी लाइन है, चौथी लाइन कहते कहे छे भगवान तारु द्रव्य भिन्न, क्या कहा, तारु द्रव्य भिन्न, तारु क्षेत्र भिन्न, तारो काल भिन्न, तारो भाव भिन्न, आहा पुण्य पाप ना विकारो, पुण्य पाप ना विकारो, तेनु द्रव्य भिन्न, सुन लेना अभी, तेनु द्रव्य भिन्न, उस फिर क्या लिखा, क्षेत्र भिन्न, काल भिन्न, भाव भिन्न, समझाणु काई, इतना कह करके पहले उन्होंने क्या कहा, क्षेत्र भिन्नता की बात की ना, तो जहां क्षेत्र भिन्नता होती है, क्यों, क्योंकि हम किसी भी वस्तु की भिन्नता को जब उसका क्षेत्र भिन्नता से कही जाती है, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि सर्वथा भिन्नता है, और सर्वथा भिन्नता का मतलब यह होता है कि उसका चतुष्टय भिन्न है, इतना लेना, और चतुष्टय भिन्न है का मतलब क्या, कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भिन्न है। तो पहले उन्होंने कहा कि भगवान आत्मा का द्रव्य, भगवान आत्मा का क्षेत्र, भगवान आत्मा का काल और भगवान आत्मा का भाव, कहते ये भिन्न, और पुण्य पाप, पुण्य पाप के, पुण्य पाप का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये भिन्न, क्या मतलब कि भाई साहब इसीलिए उन्होंने दोनों को पहले वस्तु सिद्ध किया, समझना जरा बात को, द्रव्य की पर्याय है ये नहीं कहा पुण्य पाप, पुण्य पाप जीव द्रव्य की पर्याय है ये बात कहकर के बात नहीं उठाई, पहले दोनों को वस्तु रूप से सिद्ध किया, और वस्तु कहो और दूसरी भाषा में कहो तो तत्व कहो, वस्तु माने नौ पदार्थ होते कि नहीं होते, वस्तु को पदार्थ को एक ही बात है ना, और आप इधर कहो तो तत्व कहो, तत्व माने तत्व संक्षिप्त में अपन लोग बोलते हैं, सच में उसका पूरा शब्दार्थ है तत्वार्थ, क्या है पूरा तत्वार्थ, तत्वार्थ माने तत्व प्लस अर्थ, तत्व प्लस अर्थ, अभी ध्यान से सुनना, एक एक न्याय बहुत गजब का है कि तत्व और अर्थ, अर्थ माने होता है, अर्थ माने होता है पदार्थ, अर्थ माने क्या होता है, अर्थ माने होता है पदार्थ, है ना, और तत्व माने उस पदार्थ का जो अपना निज स्वरूप होता है, क्या कहा, अर्थ मूल शब्द क्या है, तत्वार्थ, अब तत्वार्थ में अर्थ शब्द ये बताता है पदार्थ को, और उसमें तत्व शब्द बताता है वो पदार्थ का स्वरूप क्या है, वो उस पदार्थ का निज स्वरूप, निज स्वरूप उस पदार्थ से अभिन्न होना चाहिए और दूसरे पदार्थों से भिन्न होना चाहिए। कैसे भिन्न होना चाहिए? कि जैसे द्रव्य, देखो जैसे द्रव्य व्यवस्था, जैसे द्रव्य व्यवस्था में, ध्यान से सुनना भाई जरा, कि जैसे द्रव्य व्यवस्था में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, तो सर्वथा भिन्न है कि कथनचित भिन्न है? सर्वथा भिन्न है ना। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा न्यारा है। इसी तरह तत्व व्यवस्था में जब हम बात करते हैं, जैसे एक द्रव्य अगर दूसरे द्रव्य रूप हो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ हम कोई संबंध स्थापित करें, तो छह द्रव्यों की भिन्नता खत्म हो जाती है। छह द्रव्यों में अभिन्न पने का प्रसंग आता है, द्रव्य के नाश का प्रसंग उपस्थित होता है। ठीक यही व्यवस्था तत्व व्यवस्था में है कि जब आपने नौ तत्व अथवा सात तत्व, पुण्य पाप को मिला दो तो नौ है ना, और नहीं तो सात तत्व, तत्व कह रहे हो आप, तत्व माने पदार्थ, और पदार्थ माने कैसा पदार्थ? कि जिसका अपना निश्चित कोई स्वरूप है। जैसे सुनना भाई, जैसे कोई द्रव्य कभी अधूरा नहीं होता, समझना। एक एक न्याय, ये गुरुदेव की एक लाइन पर चर्चा चल रही है कि उनका चतुष्टय भिन्न है, कि जैसे कोई द्रव्य भिन्न नहीं, जो जैसे कोई द्रव्य अपूर्ण नहीं होता, माने उस द्रव्य का द्रव्यत्व उसमें, उस द्रव्य का क्षेत्रपना उसमें, उस द्रव्य का कालपना उसमें, और उस द्रव्य का भावपना उसमें। ऐसा होता है कि द्रव्य का द्रव्य काल और भाव तो द्रव्य के पास और क्षेत्र दूसरे ने ले रखा हो, ऐसा है। तो फिर तत्व में ऐसा कैसे होगा भैया? तत्व में ऐसा कैसे होगा कि आत्मा जीव एक तत्व है, एक अर्थ है, और वो अर्थ है ऐसा अर्थ कि जिसका अपना एक निश्चित स्वरूप है, कभी अपने निश्चित स्वरूप से वो बदलता नहीं है। अजीव एक पदार्थ है और उसका एक अपना निश्चित स्वरूप है, वो कभी अपने निश्चित स्वरूप से नहीं बदलता। इसी तरह आश्रव बंध, अभी ध्यान से सुनना जरा बात को, कि आश्रव बंध यानी रागादि विकारी भाव जिसे अपन बोलते हैं, है ना, कि वो भी एक पदार्थ है, और पदार्थ होने से उसका भी अपना एक निश्चित स्वरूप है। आश्रव है वो पूरा आश्रव है, बंध है वो पूरा बंध है, जीव है वो पूरा जीव है, अजीव है वो पूरा अजीव है। है तो ये बात संवर निर्द्रार मोक्ष में भी, लेकिन अभी ये बात यहां नहीं है। बात तो उसमें भी लागू पड़ेगी वो, लेकिन वो बात यहां नहीं है। उसका एक कारण है, वो कारण मैं बाद में दूंगा आपके, अभी रखूंगा कि यहां पर संवर निर्द्रा मोक्ष की बात क्यों नहीं ली। इस तरह आश्रव बंध मैंने रागादि भाव को ही क्यों कहा, कि उसका स्वरूप है ना, तो उसका जो अपना स्वरूप है, तो उसके अपने स्वरूप में उसका क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे समझा दो आप। आएगा तो फिर आपने उसका क्षेत्र जीव को कैसे दे सकते हो आप? आपको अधिकार क्या है कि आप राग का क्षेत्र जीव को दे दो? कि नहीं, बाकी सब तेरा लेकिन क्षेत्र मेरे हाथ में। अरे वारे वाह जीव, कि ये कौन सा न्याय हुआ कि बाकी सब तू अपने पास रख, सिर्फ तेरा क्षेत्र मेरे पास। एक बात, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और एक बात और समझो, राग माने जो रागा रागादि भाव है ना, वो एक समय का, प्रति समय आश्रव, और एक एक समय करके, एक एक समय करके, एक एक समय करके, एक एक समय करके राग है। जब राग एक समय का, तो उसके प्रदेश कितने समय में, पर्टिकुलर राग के प्रदेश, एक एक समय, एक एक समय, एक एक समय। और इधर त्रिकाली जीव तत्व की बात करो, तो वो जीव तत्व अनादि अनंत, उसके प्रदेश भी अनादि अनंत। राग जीव में से चला जाता है, अगर राग और जीव के प्रदेश एक ही हो, कितने प्रदेश लेकर के गया राग, लेके गया कुछ है? और राग का अभाव हो गया सिद्ध परमात्मा को, अरियंत परमात्मा को, और राग और जीव के प्रदेश एक ही हैं, तो अरियंत और सिद्ध परमात्मा को राग का अभाव हुआ, तो भाई साहब कुछ तो हिस्सा दो प्रदेशों को, कितने प्रदेश कम हो गए, क्या हुआ? माने उसको आप वस्तु के रूप में देखोगे तो आपको प्रदेश भिन्नता स्पष्ट दिखाई देगी, और आप द्रव्य की पर्याय देखोगे तो तो आपको प्रदेश भिन्नता नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पर्याय के द्रव्य के प्रदेश भिन्न नहीं होते, लेकिन वस्तु और वस्तु के प्रदेश भिन्न होते हैं। यह एंगल है इसमें, ये आप लॉजिक से ही ये बात समझ में आएगी। कोई ये कहे कि तुम इधर तो आत्मा दिखाओ और इधर राग दिखाओ तब हम प्रदेश भेद मानेंगे, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, है ना। देखो, एक जगह उत्पत्ति, एक जगह उत्पत्ति होने का नाम एक वस्तु नहीं होता है, समझना। उदाहरण से, एक उदाहरण से अपन थोड़ी बात को लेते हैं कि एक जगह उत्पन्न होने का नाम एक वस्तु नहीं है। हमारे शरीर में रक्त भी बनता है, बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। भोजन अपन लोग करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त भी बनता है और उसी भोजन से हमारे शरीर में मल मूत्र की भी उत्पत्ति होती है, होती है ना। अगर ऐसे देखो तो दोनों एक ही जगह पैदा हुए ना। एक ही जगह पैदा होने पर भी उनकी स्थिति क्या है कि रक्त अगर निकल जाए तो बोतल चढ़ाते हो, खून बह जाए ना शरीर में, चोट लगे खून बह जाए तो क्या करते हैं कि बोतल चढ़ाते हैं, और मलमूत्र नहीं निकले तो एनिमा लगाते हो। होता है कि नहीं होता, बोलो ऐसा है। ये राग द्वेष है, ये एक ही जगह पैदा होते दिखते हैं ना, कि ये राग द्वेष शरीर में पैदा हुए मल मूत्र की तरह है। अब बोलो क्या भेद दिया? उस शरीर में पैदा होने मल मूत्र, शरीर में पैदा होने वाले मल मूत्र को हम शरीर का कौन सा भाग मानते हैं, जरा बताओ कौन सा भाग मानते हैं उसको? मानते हैं बस इतनी हैसियत है राग द्वेष की, और कोई हैसियत नहीं है आत्मा में। भैया बहुत गंभीरता से देखो, एक बात समझो, महाभाग्य से, ये तो गुरुदेव के अलावा किसकी दम है जो ये स्पष्टीकरण करके दे देवे, एक पंडित दीपचंद जी साहब कासलीवाल हुए हैं। विद्वानों में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल का नाम सुना होगा, चिद विलास ग्रंथ पढ़ना उनका, अध्यात्म पंच संग्रह ग्रंथ पढ़ना उसका, पर्याय का कारण पर्याय, गुरुदेव ने जो जो सिद्धांत निकाल करके दिए, पर्याय के षट कारक का सिद्धांत हो, पर्याय का क्षेत्र भिन्न का, जो जो भी बातें गुरुदेव ने कही कोई अधर से नहीं कही है। गुरुदेव के पास अनुभव का बल तो था ही, साथ ही साथ आगम का बल भी था। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि गुरुदेव को कोई बात अनुभव के आधार पर ख्याल में आ गई और उनका आगम नहीं मिला उनको, तो गुरुदेव ये बात बोलते थे कि ये बात ऐसी ख्याल में तो आती है परंतु आगम का आधार नहीं मिलता, इसलिए हम कहते नहीं। और कह तो दी, लेकिन कह दी उसमें क्या कहा उन्होंने कि आगम का बल आधार नहीं मिला हमको इसको, तो ये तुम हमारे अनुभव से हमने ये बात कही, इस बात को इस रूप में ग्रहण करना। जैसे प्रश्न हुआ था कि साहब तीर्थंकर भगवान समय दृष्टि को तो आत्मा का अनुभव होता है, लगभग 6 महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा वासना काल के आधार पे बोलते ना, कसाई की वासना काल के आधार पे। तो माता के गर्भ में जब तीर्थंकर परमात्मा पधारते हैं तो उस समय दर्शन लेके आते हैं, तो 9 महीने माता के गर्भ में 9.25 महीने रहते हैं, तो उन्हें आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती गर्भ में? क्योंकि आखिर गर्भ में तो जो स्थिति प्रोसेस है वही रहेगी, होती है कि नहीं होती है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया था, ज्ञान गोष्ठी में उत्तर है ये कि भाई बात ख्याल में आती है परंतु आगम तो मिलना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात गुरुदेव ने भावुकता से कह दी। गुरुदेव कभी भी भावुकता से कोई बात नहीं कहते, ये बात अलग है कि कहते कहते भावुक हो जाते थे, ओहो दिगंबर संतों ने केवी गजबनी सरस टीका करी छे, ये इतना भाव, इतना भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब इतने भाव आते थे उनको कि वो बात कहते कहते भावुक हो जाते थे और उनके नेत्रों से हस्र आंसू छलक जाते थे। ये तो आपने और हमने देखा होगा, लेकिन भावुकतावश गुरुदेव ने कभी कोई बात कही, इस बात को सोचना भी गुरुदेव का तीव्र अपलाप है। परम सत्य सिद्धांत, अरे एक ही महापुरुष हुआ इस अभी इस शताब्दी में जिनने ये बात, कौन बताए, ये देखो कितना स्पष्ट रूप से लिया आया, 199 पेज पे ये बात आई, 299 पे आई बात, आगे देखो मैं अभी और गुरुदेव का ही पढ़ के बताता हूं ना आपको। फिर आगे लिया, कारण के, ये बोल्ड में है, कारण के बनने ना प्रदेशो भिन्न छे, लिया उसका गुरुदेव ने किया, कर्म ना शरीर ना रज कणो तो आ भिन्न छे जुदा छे। इनकी तो बात ही ठीक है ना। अब देखना, भगवान चैतन्य सत्ता वस्तु भिन्न छे, पण राग द्वेष ना पुण्य पाप ना दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध ना विकल्पो जे छे एनो क्षेत्र, एनो क्षेत्र केनो, एनो क्षेत्र किसका, विकार का, के एनो क्षेत्र ए मेला छे, मेला मने मलिन, के ए मलिन छे तो मेला नो क्षेत्रज आत्माना निर्मल क्षेत्र मा, निर्मल क्षेत्र थी भिन्न गणवामा आव्यु छे। अब ये उन्होंने मलिन और निर्मल क्षेत्र की बात उठा करके भिन्नता की बात करी, का आत्मा का क्षेत्र तो संपूर्ण रूप से निर्मल है, आत्मा का क्षेत्र तो निर्मल है, क्योंकि भगवान आत्मा निर्मल तत्व है, भगवान आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। वचनामृत में एक प्रश्न उठाया कि द्रव्य का बहुत भाग शुद्ध रहकर द्रव्य के थोड़े भाग में तो अशुद्धता आई ना। वचनामृत में माताजी ने उत्तर दिया कि द्रव्य के थोड़े भी भाग में अशुद्धता नहीं आई है। पढ़ो वचनामृत। अरे द्रव्य कभी अशुद्ध होता ही नहीं, और जो अशुद्ध हो जाए उसे द्रव्य कहते ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं होता द्रव्य अशुद्ध? क्योंकि द्रव्य में कभी किसी की मिलावट नहीं होती। शुद्ध का, यहां शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, कि यहां शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यह है कि जैसे वो जैसा है वैसा रहता है। वो जीव है तो जीव रहेगा, अजीव है तो अजीव रहेगा, वो उसकी शुद्धता। आश्रव शुद्ध है क्या शुद्ध है? अच्छा अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दो अक्षय भाई, आज आप ही दे दो उत्तर। आश्रव आश्रव रूप से शुद्ध है, माने वो शुद्ध रूप से आश्रव है, उसमें ना जीव की मिलावट ना उसमें आप संवर की मिलावट करो। अगर आपने उसमें जीव को मिला दिया तो भी अशुद्ध हो गया, और उसमें आपने संवर को मिला दिया तो भी वो अशुद्ध हो गया, वो शुद्ध आश्रव नहीं रहा। शुद्ध आश्रव माने आश्रव का आश्रव रूप होना। बात समझ में आई? तो वो मलिन है, कि वो मलिनता, उसके प्रदेश मलिन और भगवान आत्मा के प्रदेश निर्मल, मलिन का क्षेत्र निर्मल के क्षेत्र से भिन्न गिनने में आया है। ये बात कह रहे ना, है ना। दूसरे कितना गजब का तर्क है कि देखो भाई, वस्तु के रूप में जब आपने उसको स्थापित कर दिया तो उस वस्तु का सब कुछ उस वस्तु के पास होगा, एक वस्तु का कुछ भी दूसरी वस्तु के पास नहीं होगा। तो ये क्या बात हुई कि हम ये कहें कि नहीं नहीं, राग का और सब राग के पास रखो, लेकिन क्षेत्र मेरे पास चाहिए। क्यों, तुझे क्या चाहिए क्षेत्र? तेरे पास क्षेत्र नहीं अपना, तेरे पास अपना क्षेत्र नहीं है। जब तेरे पास अपना क्षेत्र है तो तुझे राग का क्षेत्र अपने में क्यों चाहिए, ये बता पहले तो। लेकिन ये नहीं, नहीं, नहीं बता पाए भाई, बहुत गंभीर है, समझो बात को। देखो क्या कह रहे हैं यहां पे, कि निर्मल क्षेत्र थी भिन्न गणवामा आव्यू छे, समझाणु काई आ भेद विज्ञान कहवाय छे। इसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान में ऐसा नहीं होता, भेद विज्ञान में तो सीधा यह होता है कि एक चोट और दो टुकड़े। नहीं नहीं, वो द्रव उसका और सब उसमें रखो, लेकिन प्रदेश अपने में रखो। अरे क्या करना है तेरे को, तेरे पास प्रदेश है ना अपने, क्यों चाहिए? विचार तो करो, क्यों चाहिए? ये कह रहे हैं यहां पे, मानस ने बाहर, मानस ने बाहर थी नवरो थाय त्यारे आ अंदर में जाए ने जोवा कि शू छे आ। अभी गुरुदेव ने कि अभी बाहर से निवृत्त होवे तब तो अंदर में देखने जाने के लिए निवृत्त हो, तब तो देखने जाए अंदर में, अब बाहर की पंचायत में पढ़ाओ। हाँ, 24 घंटे वही गोरख धंधा, वही गोरख धंधा, वही गोरख धंधा, वही गोरख धंधा, अभी कहां निवृत्त हो अंदर में? गुरुदेव बोलते थे ना, 24 घंटे में से 22 घंटे तो एकांत पाप, है ना, और एक आध घंटे कदाचित सुनने जाए तो उसमें भी जो माथे बैठा हो वो जो कहे उसकी जय नारायण करके आ जाता है। ये गुरुदेव बोलते क्या मतलब इसका, कि इसका मतलब ये कि अरे भाई ये जो तू कहता है कि मैं देखो सुनने जाता हूं ना, मैं इतना तो करता हूं ना, तो वो कहते कि ये तो एरन की चोरी और सोयनो दान। गुरुदेव सच में, गुरुदेव पुण्य भी किसे बोलते थे पता है, वो बोलते थे दो चार घंटे सत समागम हो, सत शास्त्र का अध्ययन मनन हो तो काई पुण्यपन बंधाए। माने उनका वजन किस पर जाता था हमेशा कि तुम सत्संग करो और स्वाध्याय करो। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय से मार्ग मिलेगा। और एक बात और समझ लेना कि जब भी अपन ज्ञानी पुरुष की वाणी सुनने और समझने के लिए बैठे तो अपने जितने पूर्वाग्रह हैं, जैसे मंदिर के मंदिर में घुसते ना अपन लोग, तो मंदिर में घुसते समय अपन क्या बोलते हैं, निस्सही 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 निस्सही, माने सर्व संसारिक बातों को मंदिर के बाहर, तो वो पुराने पूर्वाग्रहों को भी निस्सही करके आना वहां पे। और फिर बाद में ये बात अपन सुने और नहीं समझ में आए तो मंदिर के बाहर जाकर सही सही जो अपनी है वो ले लेना वापस, क्या तकलीफ है, कौन मना कर रहा है ना। लेकिन अपना आग्रह रखकर कभी भी ज्ञानी की बात नहीं सुनना। ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं, ये प्रदेश भेद की बात कहना चाह रहे हैं ना, तो इसमें कुछ विशेष कहना चाहते हैं जहां हमारी नजर नहीं पहुंच रही वहां हमें ज्ञानी पहुंचाना चाहते हैं, तो कोई विशेष न्याय कहना है ना उनको, तो उनके उस विशेष न्याय को उसी रूप में अपने को ग्रहण करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण इसके अंदर आया है। देखो ये कह रहे हैं और भी, देखो क्या कह रहे हैं, देखो अभी देखो एक कितनी महिमा गुरुदेव को आई। देखो ये भी एक बहुत अच्छा पैरा आया कि जेने भगवान बखाने छे, अर्थात जिसकी महिमा भगवान करते हैं, किसकी महिमा भगवान करे। अरे 170 तीर्थंकर थे ना जिस समय भरत क्षेत्र के अंदर, अजितनाथ भगवान के समय में वो 170 तीर्थंकर क्या कर रहे थे आपको पता है, क्या कर रहे थे, आत्मा के, मेरी आत्मा के गीत गा रहे थे। भगवान किसके गीत गाते हैं, आत्मा के गीत गाते हैं, आत्मा के गीत गाते हैं, अर्थात भगवान मुझे मेरी महिमा का परिचय कराते हैं, है ना। तो जेने भगवान बखाने छे, जेना गुणगाम करता शास्त्र थाकी जाए छे। क्या मतलब कि सर्वार सिद्धि का 33 सागर की आयु होती है, और एक बार जो चर्चा आ जाए वो बात दोबारा चर्चा में नहीं आती, कि सर्वार सिद्धि के देव करते क्या हैं कि 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, आत्मा की स्वरूप की महिमा का गुणगान करते हैं, और एक बात जो रिपीट आ जाती है वो बात दोबारा नहीं आती। अब आप सोचो आत्मा का वैभव, उसका खजाना कितना गजब होगा। हम ऐसे भी देखें ना, ऐसे भी देखें हम तो शुद्धि और अशुद्धि को दूसरे रूप में भी लें अपन, तो आत्मा नित्य शुद्ध है। क्या कहा, आत्मा कैसा है, नित्य शुद्ध। और विकार है ना, रागादि विकार, वो एक क्षणिक समय, एक समय की क्षणिक विकृति है। इधर एक समय अनादि अनंत शुद्ध, कितना शुद्ध, कैसा शुद्ध, अनादि अनंत शुद्ध, और इधर क्या है कि एक समय की क्षणिक विकृति, वो भी एक समय की, दूसरे समय की अशुद्धि नहीं है आपके पास, दूसरे समय नई अशुद्धि पैदा हो लेकिन वो की वो अशुद्धि दूसरे समय नहीं रहती। और जो 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 स्वभाव है ना, जो गायक भाव है ना, कि वो का वही, वो का वही अनादि अनंत, वो नित्य शुद्ध है। जब हम अब दूसरी शैली से चर्चा लो, कि जब हम एक समय की अशुद्धता को मुख्य करके अनादि अनंत शुद्धता को इस हद तक गौण कर देते हैं कि एक समय की अशुद्धता को देखकर उस त्रिकाली अनादि अनंत शुद्ध तत्व को अशुद्ध मानने लगते हैं, क्या हम इसका उल्टा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कि जब एक समय की अशुद्धता को गौण करके अनादि अनंत नित्य शुद्धता को मुख्य करते हुए, उसको सर्वस्व करते हुए अपने बोल क्यों नहीं बदलते कि मैं शुद्ध हूं। जब ये बोल आवे वो ठीक है, और जी हां वो ठीक है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है, क्या बोलेगा ये, क्या बोलेगा कि हलवे में कंकर आ गया तेरे, क्या हुआ, हलवे में कंकर आ गया। द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है। जब ये बोला उसी समय अभिप्राय में काला नाग बैठा हुआ है कि लेकिन पर्याय में तो अशुद्ध है, तो भूलता ही नहीं है। एक समय के लिए नहीं भूलता कि पर्याय में पर्याय में है ना, तो तुझे तकलीफ क्या है, पर्याय में अशुद्धता है तो रहने देना पर्याय में। पर्याय की अशुद्धता मैंने पड़ोसी का, पड़ोसी को पेट दर्द हुआ तो अपन क्यों दवा लें, तो पर्याय में अशुद्धि है तो मुझे क्या तकलीफ है उसकी, मैं तो शुद्ध हूं ना। एक बार अपनी शुद्धता की हुंकार भरे, अब फिर बोल, एक बार पहले अपनी शुद्धता की हुंकार भर और फिर बाद में बता किधर पर्याय में अशुद्धता है। ये शुरुआत ही करता है पर्याय में अशुद्ध है ना, वो तो घर से निकला और बिल्ली रास्ता काट गई, अभी क्या करे है? ऐसी बात है, बहुत गजब की बात है। शेष चर्चा अपन और कल की स्वाध्याय में कर लेते।
सहजानंदीशोध स्वरूपी अविनाशे हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदीशोध